गोपाल की जय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर तिरुभाव तिथिमा महोत्सव की जय। गदाधर पंडित तिरुभाव तिथिमा महोत्सव की जय। कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। आर कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। आर कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेराब कांदिया बेराब देह सुख चारी। कांदिया बेराब देह सुख चारी नाना लता तोरु तले। नाना लता तोरु तले कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। आर कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। सपच गृहेते सपच गृहेते मागिया खाइब। सपच गृहेते मागिया खाइब। सपच गृहेते मागिया खाइब पीब सरस्वती जल। आर पीब सरस्वती जल कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। आर कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। पुलिने गड़ा गड़ी दीब कोरि कृष्ण कोलाहल। पुलिने गड़ा गड़ी दीब कोरि कृष्ण कोलाहल। धामवासी जने प्रणति करिया। धामवासी जने प्रणति करिया। धामवासी जने प्रणति करिया मागिब कि पारले। आर मागिब कि पारले कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। आर कबे गौर बने सुरध्वनि तटे हराधे हा कृष्ण बोले। वैष्णव चरण रेणुगाए माखी धरिया बोधूत बे। वैष्णव चरण रेणुगाए माखी धरिया बोधूत बे। गौरव्रज जाने गौरव्रज जाने भेदना देखिब। गौरव्रज जाने भेदना देखिब। गौरव्रज जाने भेदना देखिब। गौरव्रज जाने বেদনা দেখিব হইব বরজবাসী, আর হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী। আর ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী। কবে গৌরবনে সুরধ্বনি তটে, হারা দেহা কৃষ্ণ বলে। আর কবে গৌরবনে সুরধ্বনি তটে, হারা দেহা কৃষ্ণ বলে। আর কবে গৌরবনে সুরধ্বনি তটে, হারা দেহা কৃষ্ণ বলে। আর কবে গৌরবনে সুরধ্বনি তটে, হারা দেহা কৃষ্ণ বলে। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারী, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারী। যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যমুনা তীরাবনচারী, যমুনা তীরাবনচারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। জয় রাধা গিরিধারি রাধা গিরিধারি রাধে, জয় রাধা গিরিধারি রাধা গিরিধারি রাধে, অনিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল
ভাল হারিব
জয়ং বিশ্বনাথ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য জ্যেষ্ঠোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ শিলাভয় চরণবৃন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল্পোপাধি কি শীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তিরুভক্তি মহোৎসব কি গদাধার পণ্ডিত তিরুভক্তি মহোৎসব কি গৌর প্রেমানন্দের হরি হরি ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নম ভগবতে বাসুদেবায় ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু অবদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবায় ভগবতীর উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভাবতী নৈষ্টিকি হরে কৃষ্ণ। বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরজি আজ তিরুভাব তিথি, সাত সাত গদাধর পণ্ডিত তিরুভাব তিথি মহামহোৎসব। তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কা গুণকীর্তন, গৌর জন নিজ পার্শ্বদ গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ। যে কি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কা নিত্য জন নিত্য সিদ্ধ পার্শ্বদ উনকা গুণকীর্তন করনা ইয়ে মামুলি বাত নেই। সাধু গুরু বৈষ্ণব কা কৃপা সে মে থা প্রয়াস কর সকতা হুম কি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কা বারে কুছ বতানে কে লিয়ে, কি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌর সুন্দর কা নিজ জন জিনোনে রূপানুগা ধারা মে গৌর সুন্দর কা লুপ্ত বাণী কো ইস বদ্ধ জীব কে লিয়ে পুনঃ প্রচারিত কিয়ে থে। যা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কা অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্শ্বদগণ সব অপ্রকটিত হয়ে গয়ে থে ইসি ধরাধাম সে, তব উনকা যো বাণী উনকা যো শিক্ষা ও শিক্ষা একদম লুপ্ত হয়ে গয়ে থে তৎকালীন সময় মে। যা নিজ পার্শ্বদবৃন্দ অপ্রকট হোনে কে বাদ অপর সম্প্রদায় ইতনা শক্তিশালী হয়ে গয়ে সে অপর সম্প্রদায় কে রুখনে কে লিয়ে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সবসে জাদা প্রয়াস কিয়েছে। আর এই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কা মহান চরিত্র হিনকা জীবনী বললে মে তাকত হোনা চাইয়ে বল হোনা চাইয়ে বৈষ্ণব শক্তি হোনা চাইয়ে তব বল সকতে হ্যাঁ। মে প্রয়াস করুঙ্গা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কা উপর কুছ বর্ণন করনে কে লিয়ে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইসা এক মহান চরিত্র, মহান বৈষ্ণব। শ্রীল প্রভুপাদ জি বর্ণন কর রে কি ভাগবত কে শ্লোক কবি কবি কিছু কে সামনে বহু কঠিনাই লাগতে হয় পড়নে মে, তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সবকে লিয়ে এক সহজ সরল উপায় বতায়ে। শ্রীমদ ভাগবত কা 18,000 শ্লোক কা উপর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লগভগ 800 সে উপর ভজন লিখ দিয়ে হ্যাঁ। মতলব কিছু কো আগর ভাগবত কে সংস্কৃত কঠিন শব্দ পড়নে মে থোড়া তকলিফ হতা হ্যায় তো যাকর ইয়ে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কা ভজন কা উপর পড় সকতে হ্যায়। জেসে পহলে মেনে গয়া কবে গৌর বনে সুরধ্বনি তটে হারা দেহা কৃষ্ণ বলে, ইয়ে গদাধর পণ্ডিত কা তিরুভাব তিথি মে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সুখদা না সরি সুখদা কুঞ্জ মে বৈঠকর ইয়ে কবে গৌর বনে সুরধ্বনি তটে হারা দেহা কৃষ্ণ বলে ইয়ে ভজন লিখেছে। জেসে কি রথযাত্রা কা সময় যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রথ মতলব সিংহাসন সে রথ মে যা রায় তো উসি সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কা মুখারবিন্দ সে এক মণিমা মণিমা শব্দ নিকলে। মণিমা কা অর্থ হতা হ্যায় কিসি কো রেসপেক্ট দেনা, মতলব কিসি কো মান দেনে কা। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন পহলা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বনে থে दिनाजपुर जिला में, पश्चिम बंगाल में एक जिला होता है जिसका नाम है दिनाजपुर जिला। इस दिनाजपुर जिला में तत्कालीन समय में सब इंग्रेज शासन चल रहा था। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस मोनिमा शब्द अपना गुरु विपिन बिहारी का मुखारविंद से उन्होंने ये शब्द को चयन किए थे। भक्तिविनोद ठाकुर जब पहली बार विपिन बिहारी को मिले, शास्त्र में वर्णन किया है कि भक्तिविनोद ठाकुर पहले शाक्त संप्रदाय का थे, मतलब शाक्त का अर्थ होता है काली का भक्त वगैरह थे। लेकिन काली का भक्त होने के नाते भी कृष्ण के ऊपर बहुत ही उनका श्रद्धा भक्ति सब कुछ थे साथ में। महाप्रभु का नाम उन्होंने पहले सुना भी नहीं था कुछ भी। उनका एक सहकर्मी जिसको बोलते हैं, जिसको जिस ऑफिस में भक्तिविनोद ठाकुर काम करते थे, उन्होंने एक बार पहली बार उनको बताया चैतन्य महाप्रभु के बारे। तब महाप्रभु के ऊपर कुछ भी किताब मिलना बहुत मुश्किल होता था, चैतन्य चैतन्य से मिलना बहुत कठिन काम था उनके लिए। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है भगवान गोला। इस भगवान गोला में एक छोटा परिवार में जिनका नाम है सुकुमार चक्रवर्ती, एक बंगाली सरनेम होता है सुकुमार चक्रवर्ती। इस सुकुमार चक्रवर्ती के घर में एक छोटा किताब उनके मिले थे चैतन्य चैतन्य का ऊपर, जिसमें कुछ भावार्थ वगैरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ प्यार छंद में चैतन्य चैतन्य को पहली बार उन्होंने प्राप्त किए थे इस उड़ीसा जिला में। तो उड़ीसा में जाकर जब उन्होंने ये चैतन्य चैतन्य लेकर आए, जब उन्हें पहली बार पढ़ा कि ये चैतन्य स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान, तब उनका मन प्रभावित हो गए थे देखकर। और उन्होंने तब से ये शाक्त, जो शाक्त धर्म जिन्होंने स्वीकार कर लिए थे, शाक्त धर्म को उन्हें त्याग दे दिए थे। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कि एकदम बंगाल में तत्कालीन समय में बहुत फेमस, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ उनके साथ पहली बार मुलाकात हुए, तो पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा था, उसमें भगवान का वर्णन किया कि ईश्वर निराकार। इस ग्रंथ जब भक्तिविनोद ठाकुर के सामने उपस्थित हो गए थे, तब उन्होंने पूछा कि आपने इस जो निराकार शब्द को आपने व्यवहार किए, जो यूज किए निराकार शब्द को, आप निराकार का अर्थ मेरे को बताओ। तो पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर जिनको पंडित उपाधि प्राप्त हुए थे उन्होंने, तो पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर होकर भी भक्तिविनोद ठाकुर का सामने मस्तक हिला दिए। तो मैंने तो लिख दिया हूं, लेकिन मेरे को असली अर्थ क्या होता है निराकार वो मेरे को पता नहीं है। तब भक्तिविनोद ठाकुर उनको बताए सब कुछ। तो भक्तिविनोद ठाकुर का जो पूर्वाश्रम, जिनको उनका पहले नाम था केदारनाथ दत्त, जिस दत्त परिवार एकदम आज भी कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है हैरिसन रोड, जहां पे प्रभुपाद जी का पहली रथ यात्रा कार्यक्रम चालू किए थे हैरिसन रोड से। उनका परिवार का घर था हैरिसन रोड में। उसी समय इंग्रेज शासन चल रहा था। एक ग्रंथ में इसका वर्णन किया कि भक्ति विनोद वाणी वैभव में, कि जब तो भक्ति विनोद ठाकुर इस मोनिमा चैतन्य चैतन्य से जो पढ़ लेते, मोनिमा शब्द का अर्थ क्या होता है उनको पता नहीं था कि मोनिमा का अर्थ क्या है। दिन रात भर उन्होंने सोचने लगे कि मोनिमा शब्द का गूढ़ तत्व क्या है। सोच नहीं पाए कि मोनिमा का अर्थ क्या हुआ। ऐसा रात भर सोचते सोचते गोभीर जब रात हो गए, तब उन्होंने सपने में देखा कि भक्तिविनोद ठाकुर को कोई आके बता रहे कि आपका परम गुरु विपिन बिहारी आ रहा है इस मोनिमा शब्द को आपको समझाने के लिए। इसके बाद एक हफ्ता बाद भक्तिविनोद ठाकुर का गुरु जी विपिन बिहारी आए उनके सामने। विपिन बिहारी आकर उनको समझे जो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मोनिमा। प्रभुपाद जी इस मणिमा का अर्थ व्याख्या की है कि दिस इज द रेस्पेक्टेबल वर्ड, ये है सम्माननीय एक शब्द होता है। जैसा कि आपका घर में कोई मेहमान आते हैं तो उसको आप संबोधन करते रेस्पेक्ट देते, इस रेस्पेक्टेबल वर्ड से जो मणिमा। भक्तिविनोद ठाकुर जब डेपुटी मजिस्ट्रेट बने थे दिनाजपुर जिला में, तब सब इंग्रेज लोग का सब चल रहा है उधर, तो एक इंग्रेज आए भक्तिविनोद ठाकुर को मिलने के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर तब चैतन्य चैतन्य पढ़ लिए, मणिमा शब्द का भी गाढ़ गूढ़ तत्व तो क्या है उनको पता हो गया। तो इंग्रेज आए उनका सामने, इस ग्रंथ में बहुत अच्छे तरीके से भक्ति विनोद वाणी वैभव में इसका मणिमा का वर्णन की है। तो एक इंग्रेज आ गए उनका सामने, आने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर अपना चेयर छेड़ के उठ गए। जैसे कि एक कहावत होता कि कोई दूसरा व्यक्ति घर में आता है तो उसको बोलना पड़ता कि नमस्कार। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको कह दिए कि मणिमा मणिमा। तो इंग्रेज उनको पता नहीं है कि मुनिमा का शब्द का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश का एक बड़ा ऑफिसर है, उसका नाम भी इस ग्रंथ में वर्णन की है कि जब उन्होंने आए तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको बता दिया कि मुनिमा। तो इंग्लिश ने बता दिया कि ठाकुर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मुनिमा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताया कि आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, मैंने आपको बाद में समझा देता हूं। तो वो इंग्लिश ने पूछने लगे, नो 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 नो, यू कैन स्पीक नाउ, बट ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड्स ऑफ द मणिमा। इस ग्रंथ में भक्ति विनोद वाणी वैभव में उसका वर्णन किया है। तो साहेब का सामने वो इंग्रेज शासक है, बहुत बड़ा ऑफिसर, तो उनका सामने ये मणिमा शब्द को इतने अच्छा लगे। तो इंग्लिश ने बताया कि लेट अस डिस्कस अबाउट मणिमा, आइए आप हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जय श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। तो आइए पहले हम लोग इस मणिमा शब्द को गूढ़ तत्व को बताते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस इंग्लिश को बताए कि इस मणिमा शब्द का अर्थ क्या है। तुमने बताया कि मणिमा का अर्थ था कि वैभव स्मृति। तो इंग्लिश है उनको तो पता नहीं है कि वैभव स्थिति क्या है। तो बाद में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बताया कि वैभव स्थिति का अर्थ होता है कि घर में अगर कोई मेहमान आए, कोई व्यक्ति आए, कोई गेस्ट आए तो उसको स्वागत करने का एक शब्द निकलता है जिसका नाम है मणिमा। जैसे कि महाप्रभु जब जगन्नाथ को लेकर जा रहे थे सांझ के बाद रथ यात्रा का दिन, जिसको वो कहते हैं कि पोहंडी विजय उत्सव, इस पोहंडी विजय उत्सव जब चल रहे थे सब, जब महाप्रभु अपना पार्षद को लेकर ये पोहंडी विजय उत्सव दर्शन करते, जब जगन्नाथ जी को उन्होंने पहले देखा सांझत्र के बाद, नेत्र दर्शन होने के बाद जब पहली बार महाप्रभु देख लिए जगन्नाथ जी को दर्शन की, अपना पार्षद के साथ महाप्रभु कहने की मुनिमा मुनिमा कहो तो वार। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनको बताए कि इस मुनिमा का शब्द का अर्थ क्या होता है। तब भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे एक महान परिवार में उनका जन्म हुआ था, भालवी सप्त वंश का है, काली का भक्त पहला। उनके दत्त परिवार जो है शुरुआत से उसी समय बंगाल में ज्यादा से ज्यादा कोई वैष्णव भक्त नहीं बनते थे, अधिक से अधिक सब काली का भक्त बनते थे। काली का पर पूर्ण श्रद्धा, क्योंकि काली का भक्त बनने में सब कुछ कर सकते थे। ये दत्त परिवार एक महान परिवार होते नाते भी उनका घर में एक महान वैष्णव प्रकटित हो गए। उनका पहले का नाम था केदारनाथ दत्त। 12 साल उम्र में भक्तिविनोद ठाकुर ने शादी विवाह की थी। जब उनका शादी विवाह हुए उनका धर्मपत्नी का 5 साल उम्र है, 5 साल उम्र और 12 साल का भक्तिविनोद ठाकुर दोनों में शादी विवाह हुए। जब पहला संतान आए उसके बाद उनका पहला पत्नी गुजर गए, तो संतान को देखभाल करने के लिए किसी को होना चाहिए, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने दूसरी बार शादी कर ली। ये दूसरी शादी का ऊपर अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग तरीके से कोई कोई चर्चा की, कोई कोई निंदा वाक्य भी प्रयोग की। एक महान वैष्णव होकर भी उन्होंने दूसरा शादी क्यों किए थे? ये दूसरा शादी का ऊपर एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम और प्रदीप, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर जब डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे मालदा जिला, जहां पे राम केली है, जहां पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गए थे, उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर इस मालदा जिले का डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट। और डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट का समय उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है प्रेम और प्रदीप। इस प्रेम और प्रदीप ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन किए कि किस अवस्था प्राप्त होकर मेरे को दूसरा शादी भी वो करना पड़े। तत्कालीन समय में ऐसा था कि महाप्रभु का नित्य जन पार्षद सब अप्रकट होने के बाद महाप्रभु का जो शिक्षा है वो शिक्षा को प्रचार करने के लिए कोई नहीं था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने आकर ये फिर महाप्रभु का शिक्षा जो है ये शिक्षा का प्रचार करना उन्होंने चालू कर दिया। और उनका पिताजी का नाम था आनंद चंद्र दत्त, वो भी धार्मिक व्यक्ति थे। ये आनंद चंद्र दत्त का साथ शादी विवाह हुए थे एक नदिया जिले में बीड़नगर बोल के एक जगह है जो कि कृष्णनगर स्टेशन से दो स्टेशन पहले का है, बीड़नगर। बीड़नगर में एक बहुत ही बड़ा जमींदार है जिसका नाम है ईश्वर चंद मुस्तफी। उनका घर का एक ही लड़की जिनका नाम है जगन मोहिनी, ईश्वर चंद मुस्तफी का इतना बड़ा मकान थे कि इस मकान को देखने के लिए दूर 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 से जनता आती थी उसे मकान को दर्शन करने के लिए। और ऐसा एक परिवार में भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म हुए थे। भक्ति विनोद ठाकुर का जब जन्म हो गए, जन्म होने के बाद जगनमयी देवीनी का पिता ईश्वर चंद मुस्तफी उन्होंने एक बड़ा ज्योतिष को बुलाकर लेकर आए कि देखो मेरा घर में मेरा पोते बोलते हैं, तो पोते आए तो देखो इसको अच्छे तरीके से सब देखो ये क्या बन सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर चंद मुस्तफी जो है इनका घर में बहुत ही बड़ा बीड़नगर में बहुत बड़ा एक काली मंदिर था, काली माता का पूजा वगैरह होते रहते थे। तो ईश्वर चंद मुस्तफी उनका मन में विचार था कि देखो मेरा एक पोते आए जिसको मैं अच्छा तरीके से काली भक्त बनाना चाहता हूं। तो महान महान ज्योतिषी को सब बुला लिए। बीड़नगर एक ऐसा आज तो शहर बन गए, टाउन हो गए, तो पहले वो बहुत गांव था। तो बीड़नगर एक फेमस था कि ज्योतिष आश्रय, श्री भोपाल जी वर्णन कर रहे कि बीड़नगर इज ए सच टाइप ऑफ प्लेस वेयर द मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर स्टे दियर यूज टू स्टे दियर। बीड़नगर एक ऐसा जगह है जहां पे एक से एक एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष उधर रहते थे। जगनमोहिनी देवी का पिताजी ईश्वर चंद मुस्तफी एक बड़ा जमींदार है, हर जमींदार घर का एक ही बेटी है जगनमोहिनी। उन्होंने इतना बड़ा एक अट्टालिका बनाए जिस मकान को देखने के लिए जनता आ जाते सिर्फ दर्शन करने के लिए इस मकान को। उसी समय प्रभुपाद जी इस बीड़नगर को वर्णन किए कि प्रभुपाद जी जब पहली बार मायापुर में अपना विदेशी शिष्य को लेकर गए थे तो आने का समय प्रभुपाद जी इस बीड़नगर में भी गए। तो बीड़नगर में जाकर अपना विदेशी शिष्य को सब दिखा इस मकान को, तब भक्ति विनोद ठाकुर का बारे वर्णन कर दिए। तो ईश्वर चंद मुस्तफी उन्होंने जब पूरा ज्योतिष वगैरह सबको बुलाकर लेकर आए, एक से एक बड़ा बड़ा ज्योतिष लोग सब आ गए सामने कि देखो मेरा पोते को अच्छे तरीके से देखभाल कर, देखो देखकर बताओ उनका भविष्यवाणी बोलो क्या है, उनको क्या वो बन सकते हैं। तो सब ज्योतिष ने बोले कि देखो आपके घर में जो है भले भी आप काली भक्त को लेकिन एक काली का विपरीत कार्य करेंगे। बता रहे काली का विपरीत कार्य करेंगे मतलब काली का मतलब ये परम वैष्णव बन जाएंगे। तो ईश्वर चंद मुस्तफी ये सुनकर एकदम क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर कहने लगे कि आपने इतना बड़ा गांव है बीड़ नगर, इतने सारे ज्योतिष है, सब आप लोग पहले से मीटिंग करके आए थे कि मेरा पोते को यही बोलने का है कि वो वैष्णव बन जाएंगे। वो तो ईश्वर चंद्र मुस्तफी सब ज्योतिष को निकाल दिए घर से। उसमें से एक ज्योतिष था जिसका नाम है काव्यचरण व्याकरण तीर्थ। मैंने नाम एक्चुअली भूल गया, काव्यचरण व्याकरण तीर्थ ऐसे कुछ नाम होगा। तो काव्यचरण व्याकरण तीर्थ वो रुक गए थे। तो ईश्वर चंद्र मोस्तफी क्रोधित होकर पूछा, अरे मैंने तो सबको भगा दिया, आप क्यों रुक गए हो? बोलता है, मैंने इसके लिए रुका हूं कि मैंने और गंभीर तत्व में आपको बताना चाहता हूं इस बच्चा का ऊपर। जैसे जब महाप्रभु प्रकटित हो गए थे, नीलम चक्रवर्ती ठाकुर देखकर उनको बता दिए कि देखो ये बच्चा ऐसा कोई मामूली नहीं है, एक महापुरुष बनेंगे ये। इसका पैर में देखो एक से एक चिन्ह वगैरह है, सिम्टम्स वगैरह है। तो इस काव्यचरण व्याकरण तीर्थ तत्कालीन समय में एक बहुत बड़ा ज्योतिष है बीड़ नगर गांव का। इस काव्यचरण व्याकरण तीर्थ बता दिए कि देखो ये जो आपका घर में जो है ना, ये ऐसा कोई मामूली नहीं है, ये महापुरुष बनेंगे और देश विदेश में इसका नाम प्रचार हो जाएगा पूरा। तो ये सुनने के बाद ईश्वरचंद्र मुस्तफी और क्रोधित हो गए। बोले, मैंने ये सुनने के लिए नहीं चाहता हूं, मैं चाहता था कि मेरे घर में जो पोते आए ना, वो अच्छे तरीके से काली भक्त बन जाए। बोले, देखो जो लिखा है जो मैंने वही बताया। तब ये ईश्वर चंद्र मुस्तफी उनका बेटी जगनमणि देवी को पूछना है कि देखो ये तो सब इतने सारे सब ज्योतिष वगैरह आए, सब लोग आके बता दिए कि आपका बेटा जो एक महापुरुष बनेंगे, महान विष्णु बनेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। तो जगनमोहिनी देवी पूछने लगी कि आप क्या चाहते हो पिताजी, बताओ। मतलब मैं चाहता हूं कि आपका जो ये मेरे जो पोते हैं ये एकदम बड़ा काली भक्त बन जाए। तो ऐसे स्कूल में इसको पढ़ना है जिस स्कूल में जाकर वैष्णव का बारे कुछ चर्चा नहीं होता है। तो चर्चा नहीं होता है तो कैसे होगा ये? तो ऐसा स्कूल में लेकर जाओ जहां पे वैष्णव का ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं होता है, ऐसे स्कूल में देना है बच्चा को। तो जगनमोहिनी देवी का पता नहीं थी कि कहां पे है ऐसा कोई स्कूल जहां पे कुछ धार्मिक चर्चा लाभ नहीं होता है। इसमें वर्णन किया है शास्त्र में भक्त विनोद वाणी वैभव ग्रंथ में कि भक्त विनोद ठाकुर के समय में स्कूल में कुछ धार्मिक चर्चा वगैरह चलते रहते थे। लेकिन ईश्वर चंद्र मुस्तफी जो है, ये दोनों है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक व्यक्ति है और ईश्वर चंद्र मुस्तफी और एक व्यक्ति है। तो ईश्वर चंद्र मुस्तफी इन्होंने ढूंढते ढूंढते थक गए कि ऐसा कोई मेरे को नहीं मिल रहा है कोई स्कूल वगैरह जहां पे सिर्फ काली का ऊपर चर्चा होता है। तो एक स्कूल उनको मिल गए थे जहां पे जाकर उन्होंने देखा कि भूत प्रेत का ऊपर चर्चा होता है। तो ईश्वरचंद्र ईश्वरचंद्र मुस्तफी आकर आपका बेटी को बताया, देखो जगनमोहिनी, मैंने ढूंढते ढूंढते एक स्कूल मेरे को मिला है जिस स्कूल में वैष्णव चर्चा नहीं होता है लेकिन भूत प्रेत का ऊपर चर्चा होता है। बता रहे, भूत प्रेत को सिखाना है मेरे बच्चे को? बताया, भूत प्रेत के बारे सिखाना है। अगर भूत प्रेत को सीखे ना तब काली का बारे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर मैंने बनाया हूं, इधर काली का मंदिर है, सामने मैंने एक शिव जी का भी मंदिर बना के रख दिया हूं, तो उसका बारे चर्चा होना चाहिए। तब वो उसी स्कूल में डाल दिए बच्चा को। शिशु भक्ति विनोद एकदम बच्चे हैं, 5 साल का उम्र, बचपन में उनको बहुत शौक था पेड़ के उतर के कुछ फल वगैरह खाने का, आम खाने का बहुत शौक था उनका। लेकिन स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लिए कि आम पेड़ का ऊपर भूत बगड़े रहते, क्योंकि स्कूल में उन्हें सीख लिए कि भूत प्रेत सब कहां कहां में रहते हैं। शमशान भूमि में जाओ भूत रहते हैं, कोई पेड़ के ऊपर में जाओ भूत रहते हैं, लेकिन उनका मन में विचार है कि आम खाने का अच्छा तरीका है। अपना मित्र सबको लेकर गए, इसको बहुत सुंदर लीला कहानी वर्णन की है। तो बोले कि अपना मित्र को सब लेकर गए एक जंगल में, भीड़ नगर उसी समय पूरे आम का पेड़ में भरे हुए थे। भक्त विनोद ठाकुर अपना आत्मचरित में विश्लेषण किए कि मैं बचपन से मेरा मन में बहुत शौक था कि आम खाने का। तो बचपन में जब मेरा मन में ये विचार आ गया कि आम का पेड़ में उठकर उनसे उतर के मेरे को आम खाना है, तो ये मेरे को बहुत आनंद मिलते हैं। लेकिन स्कूल में सुन लिए कि आम का पेड़ का ऊपर भूत वगैरह विश्वास करते, भूत रहते हैं, तो वो दुखी हो गए। दुखी होकर सलाह निकल रहे थे किस तरीके से, व्हाट इज द वे, कैसे मैं आम पेड़ से आम निकाल के मैं खा सकता हूं। तब उनका घर में जो गोडाउन वगैरह थे, मतलब जो गोडाउन को देखभाल करने के लिए एक माताजी थी, जिसको जाकर उन्होंने पूछे, अच्छा माता आप मेरे को बताओ कि ये जो आम का पेड़ का ऊपर भूत वगैरह रहते हैं, इनका डर से मैं आम खा नहीं सकता हूं। मैं अपना मित्र सबको मैं लेकर जाता हूं, आम का पेड़ का नीचे जाने के बाद ही मेरे को डर लग जाते हैं, मैं खा नहीं पाता हूं आम उतर के, लेकिन आम खाने का मेरा बहुत शौक है। क्यों, जो गोडाउन में काम करने वाली माता जी, उन्हें बताया कि देखो केदार आप एक काम करो। बोले क्या करना है? बोलते मैंने बचपन में सुना था कि भूत प्रेत ये सबको निकालने के लिए मुख से अगर राम 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 बोलोगे ना, तब भूत प्रेत निकल जाते हैं। तब उन्होंने पहली बार ये राम शब्द सुने। बोलते ऐसा है? बोलते हैं ऐसा है। बोलते ठीक है। तो अपना मित्र सबको उन्होंने एक मीटिंग किए, मीटिंग करने के बाद बोलते चलो आज आम का पेड़ में चढ़ना है, उसका ऊपर जाकर आम निकालना है। बता रहे वो आम का ऊपर तो भूत रहता है, आप ऊपर में जाओगे तो आपका गला भी दबा सकते ही है। बोलते नहीं नहीं मैंने एक मंत्र सीख कर आया हूं। बोलते कहां से सीख के आया? बोलते मेरा घर में एक चाची है, चाची का मुख से मैंने सुना हूं एक मंत्र, जिस मंत्र बोलने से और भूत निकाल जाता है उधर से। बोलते ये कौन सा मंत्र है भैया? तो मेरे को तो बताओ। बोलते चलो हम लोग जाते हैं आम का ऊपर, आम का पेड़ के सामने आए। तो उनका जितने सारे उनका भक्तिवीन ठाकुर ये आत्मचरित में वर्णन कर रहे हैं इसके ऊपर कि मैंने बचपन में मैं लेकर गए अपना मित्र लोग सबको। तो जाने के बाद जब वो पेड़ के सामने आ गए तो अपना जितने सारे मित्र लोग है सब मेरे को छोड़कर भग गए। मैं सोचा मैं तो अकेला हूं, लेकिन मेरा मन में तो विचार है कि आम का पेड़ में ऊपर में चढ़ने का और चढ़ के आम निकल के खाने का मंत्र तो मैंने सीख लिया हूं। तब उन्होंने पहली बार आम राम 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 बोलते बोलते आम का पेड़ का ऊपर चढ़ गए। जब उसका ऊपर चढ़ गए उन्होंने, तब मित्र लोग दूर से सब देख रहे, छुप गए थे इधर उधर करके। तो सब दूर में जब देखना चालू की देखा कि अरे मेरा परम प्रिय मित्र जो है केदार, उन्होंने आम का पेड़ में ऊपर बैठ के आम चूस रहे हैं। तो देखकर सबका मन में आया कि अरे अरे आप नीचे उतरो नीचे उतरो, उसके ऊपर देखो भूत पकड़े हैं, आपको कभी भी आपको गला दबा सकते हैं। पता नहीं ये गला दबाने के लिए जो दवाई है ना, वो दवाई मेरा मुखारविंद है, वो दवाई का नाम है राम 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 राम। तो ये राम राम शब्द सुनकर सब मित्र लोग आ गए, सबने बोलते अरे ये तो अच्छा दवाई लेकर है भूत को भगाने के लिए, चलो हम लोग सब जाकर एक साथ बोलना चालू कर देते हैं राम 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 राम। तो सब आए नीचे, जो जाकर भक्ति विनोद को बताया कि केदार अब नीचे उतरो, अभी हम लोग भी सब एक साथ बोलते रहते राम 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 राम। तो पूरा एक साथ मित्र लोग होकर सब राम 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 बोलना चालू किए और आम का पेड़ से आम निकाल के एकदम बड़े अच्छे तरीके से मैंगो फिस्ट बना लिए, आम का फिस्ट हो गए। तो ये जब सुन लिए उनका नाना ईश्वर चंद्र मुस्ताफी, तो क्रोधित होकर बोलता अरे ये कहां से सीख लिए राम नाम, मैंने तो उसको कभी सिखाया भी नहीं है राम नाम। उसको तो मैंने सिखाया था कि भूत प्रेत का ऊपर, ये राम शब्द तो कहां से निकल गया उनका मुख से। तो उन्होंने जाकर पूछा भक्ति विनोद का, केदार आप कहां से सीख लिए राम शब्द को? तब उन्होंने बताया कि आत्मचरित में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे इसके ऊपर कि कि जब मेरा नाना आए मेरा सामने मदर इन लॉ, जब मेरे को पूछा तब उनको मैंने पहली बार बताया, देखो नाना जब मैंने मेरा मुख से राम 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 शब्द मैंने निकाला ना, मैं देखा कि एक परम पुरुषोत्तम ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आ गए जिसके द्वारा मैंने हर तरीके से मैंने शक्ति प्राप्त किया हूं। तो बोलते आपने जो जो शिक्षा आपने प्राप्त की हो ना, ये सब गलत शिक्षा आपने प्राप्त कर ली। तो भक्तविनोद ठाकुर घर में फिर आए, घर में बहुत से रजिस्टर व्यक्ति है जिनको उनको पूछने लगे। उनका घर का सामने ये काली माता का सामने एक शिव जी का भी मंदिर बनाए कि शिव जी को कहते कि क्षेत्रपाल, तो उन्हें एक शिव जी का भी मंदिर बनाया। तो शिव जी का पुजारी है एक, तो पुजारी को जाके पूछने लगे, अरे ये आपका शिव जी कैसे है, वो बात नहीं करते किसी के साथ? बोलता नहीं, ये कलीयुग का भगवान है, कलीयुग का भगवान कभी किसी के साथ बातचीत नहीं करता, लेकिन कभी कभी कोई विशेष व्यक्ति होता है ना तो उनके साथ वो बातचीत करते रहते, कोई स्पेशल व्यक्ति आ गए उनके सामने तो बातचीत करते रहते। बोलता ऐसा है? बोलता हाँ। तो शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर, उनका सामने जाकर ये शिव जी का जो लिंग है उनका ऊपर जाकर हाथ रखकर भक्तिविनोद ठाकुर मुखारविंद से राम 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 शब्द निकले। फिर तो देखा कि राम राम शब्द को प्रतिध्वनि आ रहा, मतलब इको हो रहा है। तब भक्तिविनोद ठाकुर का मन में आए कि अरे देखो भगवान मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। तब उनका मन में जीवन में पहली शिक्षा उन्हें प्राप्त की कि भगवान का नाम बोलने से भगवान स्वयं उपस्थित हो जाता है मेरा सामने। भगवान का नाम और भगवान, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर आत्मचरित में विश्लेषण की कि मेरा जीवन में मैंने पहली शिक्षा ये प्राप्त किया कि भगवान का नाम बोलने से अगर हृदय से मैंने बोलू तो भगवान मेरा सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने शिव जी मंदिर में गए, लेकिन मैं जाकर सिर्फ राम 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 मैंने बोला तो राम राम का ये शब्द को इको हो गए, प्रतिध्वनित हो गए। और जब प्रतिध्वनित हुआ मैं देखा कि मेरा सामने स्वयं भगवान उपस्थित हो गए। और तब से उन्होंने ये काली माता को जो ऊपर जो श्रद्धा थी इतना दिन का, वो श्रद्धा को निकाल दिया अपना हृदय से। इसके थोड़ा दिन बाद भक्तिविनोद ठाकुर का माता जगनमोहिनी देवी देह छोड़ दिए थे। बचपना है भक्तिविनोद ठाकुर का, एकदम शैशव अवस्था में शास्त्र में वर्णन किए कि दस साल उम्र में भक्तिविनोद ठाकुर का जगनमोहिनी देवी भक्तिविनोद ठाकुर को छोड़कर गए। तब उन्होंने माता का घर में ही उनका पढ़ाई वगैरह सब कुछ किए थे। और ये भक्तिविनोद ठाकुर, इसके ऊपर बहुत सारे लीला का वर्णन किए हैं जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। भक्तिविनोद ठाकुर का पितामह जिनका नाम है राधा वल्लभ दत्त, तो राधा वल्लभ दत्त का एक बार बहुत बड़ा बीमारी हो गए थे। तो कोई भी डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर को बुलाकर लेकर आए लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए कोई। तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि भक्तिविनोद ठाकुर का परम प्रिय मित्र, पहले हम लोगों ने चर्चा की है उनका नाना का ऊपर, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उनका भक्तिविनोद ठाकुर का परम प्रिय मित्र जो है जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा विवाह चालू किए थे और बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ रचना की जिसका नाम है वर्ण परिचय, जो बंगाली में लिखा रहता है अ वा क ख, ये उनका द्वारा रचित हुए थे। ये भक्तिविनोद ठाकुर का परम प्रिय मित्र है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ उनका जिस तरीके से तर्क बगाड़े रहते थे उनका मित्रता भी बहुत ही अच्छे तरीके से थे। भक्तिविनोद ठाकुर का पितामह मतलब पिताजी का पिताजी, उनका नाम है राजवल्लभ दत्त। इस राजवल्लभ दत्त तत्कालीन समय में उड़ीसा में रहते थे, तो बंगाल से उड़ीसा जाने में के लिए तो उसी समय कुछ भी नहीं था, चल के जाना पड़ता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपना धर्म पत्नी और माता को लेकर उधर पहुंच गए थे पितामहों को देखने के लिए, राजवल्लभ दत्त को। तो राजवल्लभ दत्त ऐसा बहुत ही वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गए थे, लेकिन राजवल्लभ दत्त जीवन का अंतिम दिन तक अपना हाथ में खिचड़ी बनाकर खाते थे। इस खिचड़ी के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर आत्मचरित में इसका विश्लेषण किए हैं कि जब भक्ति विनोद ठाकुर अपना धर्म पत्नी और अपना माता मां दोनों को लेकर पहुंच गए थे राजवल्लभ दत्त का घर में उड़ीसा में, तब देखा कि राजवल्लभ दत्त उनको सब शास्त्रों पर चर्चा करना चालू किए और कहने लगे कि केदार, आप जब बड़ा हो जाओगे, आपका जब बहुत उम्र हो जाएगा ना, तब आप एक महान वैष्णव बनोगे और मेरा मृत्यु होने के बाद आप इस जगह में नहीं रहने का, मेरा मृत्यु होने के बाद इस जगह को तुरंत इस स्थान को आप त्याग दे देने का और जाकर बंगाल में जाकर रहने का और महाप्रभु का जो अंतिम लुप्त स्थान जहां जहां पे महाप्रभु ने लीला विलास की थी, लीला कार्य की थी, उस जगह को आप उद्धार करने का। तो पहले उन्होंने बताया कि स्वरूपगंज में है भक्ति विनोद भजन कुटीर सानंदा सुखुदा कुंज। तो इस राजवल्लभ दत्त का मुखर विंद से भक्ति विनोद ठाकुर पहले सुना साखो की जगह का नाम मैंने भूल गया हूं, तो कुंज। तो बहुत कुछ बताया राजवल्लभ दत्त ने, ऐसा बोलते बोलते उन्होंने तुरंत देह छोड़ दी उसी जगह में, सानंद सुखोदा कुंज। कि राजवल्लभ दत्त का मुखर विंद से भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले सुना सानंद सुखोदा कुंज का बारे। बोलते आप मेरा जब मृत्यु हो जाएगा ना इधर, ये हो जाने के बाद मैं जब देह छोड़ दूंगा, तुरंत ये स्थान को आप त्याग दे देने का, त्याग देकर आप उसी जगह में जाकर रहने का और उसी जगह से महाप्रभु का जो लुप्त प्राय स्थान, जो कि महाप्रभु जहां जहां पे उन्होंने लीला विलास की थी, उसी जगह को जाकर आप उद्धार करने का। तो देखिए संयोग किसको बोलते हैं। तो राजवल्लभ दत्त का मुखर विंद से उन्होंने पहली बार सुना सानंद सुखोदा कुंज का ऊपर। ये सुनने के बाद जब राजवल्लभ दत्त देह छोड़ दिए, इसका पहले का एक बहुत ही सुंदर लीला है कि राजवल्लभ दत्त जीवन का अंतिम दिन तक अपना हाथ में खिचड़ी बनाकर वो खाते रहते थे, कभी भी किसी का हाथ में कुछ खाया नहीं। आत्मचरित में भक्ति विनोद ठाकुर विश्लेषण किए कि मेरा प्रपितामह राजवल्लभ दत्त जीवन का अंतिम दिन तक अपना हाथ में खिचड़ी बनाकर खाते थे और भक्ति विनोद ठाकुर जब धर्मपत्नी और माता को लेकर पहुंच गए थे उसी जगह में, अपने हाथ में उसी दिन भी खिचड़ी बनाकर भक्ति विनोद ठाकुर को खिलाए और खाते खाते दोनों में वार्तालाप चालू हुई कि देखो केदार, मैं जब इस जगह को मैं छोड़ दूंगा ना, इस जगह से मेरा जब देह में निकल जाए, तब आप इसी स्थान को त्याग करके उसी जगह में पहुंच जाना। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रोपिता माँ का मुखर विंद से वचन सुनकर तुरंत उड़ीसा को त्याग दे दिए। बाद में बहुत साल बाद उन्हें जब फिर उधर का मैजिस्ट्रेट बने, जब जगन्नाथ रथ यात्रा हो रहे थे उसी जगह में मैजिस्ट्रेट बने, फिर गए, फिर कम से कम और 15-20 साल बाद, तो सीधा उधर से उन्होंने आए सानंद सुखोदा कुंज। उनको पता नहीं था कि सानंद सुखोदा कुंज कहां पे है। क्योंकि तब वो मालदा का डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, नदिया जिला का नहीं है। देखिए भगवान का क्या चक्कर होता है। जब उन्होंने उधर से आ गए, आने के बाद जब ऑफिस में पहला दिन ज्वाइन किया कि देखा कि उनका टेबल के ऊपर लिखा है ट्रांसफर ऑर्डर, मतलब फ्रॉम मालदा टू नदिया डिस्ट्रिक्ट। ऑफिस में पहला दिन आए, पहला दिन आकर टेबल में ऊपर देखा कि ट्रांसफर ऑर्डर लिखा है सामने, मतलब इसी जगह आपको छोड़ना है, छोड़कर आपको नदिया जिले का मजिस्ट्रेट बनना है, डिप्टी मजिस्ट्रेट का ऊपर वाला पोस्ट है मजिस्ट्रेट, डीएम बनना है डीएम, पहले वो एडीएम थे अभी डीएम। तो भक्तिविनोद ठाकुर आत्मचरित में इसका विश्लेषण किए हैं कि भगवान चाहते थे मेरे को कि नदिया में जाकर मैं अपना जीवन को विधाए। तब इस ट्रांसफर ऑर्डर को देखकर उनका मन में विचार आया कि चलो मेरे को तो इधर रहना ही नहीं है। तब उन्होंने इस मालदा जिला से पहुंच गए थे नदिया जिला में। तब नदिया जिला का डिस्ट्रिक्ट टाउन था कृष्णनगर, जो आज भी है कृष्णनगर, तो जो कि मायापुर का नजदीक में है, 120 किलोमीटर का रास्ता है, सॉरी 30 किलोमीटर का रास्ता है। तो कृष्णनगर आए, तो कृष्णनगर आने के बाद जब मैजिस्ट्रेट बन गए तो बहुत बड़ा एक बंगलो मिला भक्तिविनोद ठाकुर का, लेकिन वो बंगलो उनको पसंद नहीं हुए। बोलते नहीं नहीं नहीं, बंगलो मेरे को अच्छा नहीं लगता इसमें। अरे मैजिस्ट्रेट का बंगलो है, आपको रहना चाहिए मैजिस्ट्रेट का बंगलो है। बोलते नहीं मेरे को पसंद नहीं है। वैष्णव चरण मोर लोह मोर स्थान, भक्तिविनोद ठाकुर आत्मचरित में वर्णन कर रहे कि वैष्णव चरण मोर लोह मोर स्थान, मैं इधर रहना नहीं चाहता हूं, मेरे को एक ऐसे जगह में डालो जहां पे जाकर मैं महाप्रभु के ऊपर कुछ चिंतन कर सकता हूं। तब पता करके करके भक्तिविनोद ठाकुर इसी जगह को चुन लिए, सानंद सुखोदा कुंज। सानंद सुखोदा कुंज में आकर, जब सानंद सुखोदा कुंज में आए, इस सानंद सुखोदा कुंज में पहला भजन उन्हें लिखा कवे गौरव ने सुरध्वनि तटे, जो मैंने आज पहला गाया। हार ऐसा नियम था उसी समय कि भक्तिविनोद ठाकुर को हफ्ता में 5 दिन कलकत्ता में जाना पड़ता था, और कलकत्ता से शनिवार और रविवार सैटरडे एंड संडे उनको इसी जगह में आना पड़ता था कि इंग्रेज शासन था तब। लेकिन इंग्लिश शासन होने के बाद भी भक्तिविनोद ठाकुर को हार व्यक्ति डरते थे, इतना उनका पर्सनालिटी। उन्होंने जब पहली बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को मिले, जो आज हम लोग जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो फोटो रूप से उनको दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर बिना किसी के साथ ज्यादा वार्तालाप नहीं करते थे कभी भी। तो जब इस आनंद सुखोदा कुंज में आए, तो भक्तिविनोद ठाकुर एक दिन मिलने के लिए गए जगन्नाथ दास बाबा जी का कुटिया में। तो इस कुटिया में जाने के बाद तब तो मजिस्ट्रेट बन गए, बहुत बड़े पावर है, शक्ति है बहुत। तो जाने के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहने लगे, अरे आपके पास तो बहुत पावर है, आप एक काम करो मेरे लिए एक छोटा कुटिया बना के दो इधर। भक्तिविनोद ठाकुर सोच लीजिए, उसी समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कुटिया बनाने के लिए 150 रुपया खर्चा किए थे। ही स्पेंड मोर देन 150 रुपीज। उसमें आत्मचरित में इसका विश्लेषण किया है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को कुटिया को देखकर बहुत पसंद हो गए, कहने लगे आप ही एक व्यक्ति हो जो कि लुप्तप्राय स्थान को आप ही उद्धार कर सकते हो। तो भक्तिविनोद ठाकुर हर दिन आते, मतलब हफ्ता में सैटरडे एंड संडे 2 दिन आते थे इसी जगह में सानंद सुखोदा कुंज में। आकर तो एक दिन गोभी रात हो गए थे, उनको मन में विचार है कि महाप्रभु का जन्म स्थान सही कौन सा जगह है। तदोबोधे मायापुर एक ग्राम, पूरा कृष्णनगर नहीं, पूरा नदिया जिला का जो डिस्ट्रिक्ट मैप, पूरा मैप को सामने लेकर आ गए। ये मैप को जिन्होंने ड्राइंग किए थे उनका नाम इसमें वर्णन की है कि उनको बुलाकर लेकर आए साथ में, तो वो व्यक्ति तो डर गई एकदम। उनका नाम है पुनिंदो चंदो सॉरी तुंगारपुर चौधरी, सॉरी तुंगारपुर चौधरी वर्णन की है ये ग्रंथ में। तो उनको बुलाकर लेकर आए, तो ये चौधरी सरनेम है उनका, तो चौधरी भक्तिविनोद ठाकुर के पास आए, आके कहने लगे कि लगता है कि मेरा ये जो मैंने नदिया डिस्ट्रिक्ट का मैंने जो तत्कालीन समय में नदिया डिस्ट्रिक्ट एक ही नहीं था, आज जैसा हो गया कि मुर्शिदाबाद एक अलग हो गए, मालदा अलग हो गए, तो उसी समय नदिया डिस्ट्रिक्ट तीन जिला को एकत्रित करके, मतलब थ्री जिला कंबाइंड, तीन जिला एक साथ था, मालदा मुर्शिदाबाद और नदिया, तीनों मिलकर नदिया था। तो तीनों जिला को एक साथ एक ड्राइंग बनाए, तो जिन्होंने ड्राइंग बने उनका सरनाम था चौधरी। तो चौधरी साहब को उन्होंने बुलाकर लेकर आए भक्तिविनोद ठाकुर ने, तो भक्तिविनोद ठाकुर बुलाकर लेकर आए तो उन्होंने बताया कि इसी जगह में ये है ये। उसका पहले उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को ढूंढ लिए थे कि महाप्रभु का जन्म स्थान, असली जन्म स्थान कहां पे है वो पता नहीं कर पाए। तो चौधरी साहब ने आए साथ में, पहले उन्होंने सुना था कि नवद्वीप मध्य एक मायापुर ग्राम तथा तो जन्मिलेन गौर चंद्र भगवान, शास्त्र में पढ़ ली उसका पहले, चैतन्य मंगल चैतन्य भगत बहुत पुराना पुराना ग्रंथ में पढ़ लिया कि नवद्वीप मध्य एक मायापुर ग्राम तथा तो जन्मिलेन गौर चंद्र भगवान। तो उनका एकदम विश्वास हो गया मन में कि ये नवद्वीप एक जगह जहां पे मायापुर एक गांव जहां पे गौर चंद्र भगवान आविर्भूत हुए थे, लेकिन कौन सा जगह है, कौन सा दग नंबर है, कौन सा मोगजा है वो मेरे को पता करना है। तब वो चौधरी साहब को बुलाया जिन्होंने ड्राइंग बनाया था पूरा नदिया डिस्ट्रिक्ट का। ड्राइंग बनाने के बाद उसके जब बुलाकर लेकर उनको पता पूछने लगे कि जो मायापुर पर्टिकुलर, आई वॉन्ट टू नो दैट पर्टिकुलर प्लेस अबाउट द मायापुर, उनका जीवन चरित में वर्णन किए। तब मैंने चौधरी साहब को मैंने पूछा था कि ये मायापुर जगह का मौजा नंबर दाग नंबर जो होता है जमीन में उसका आप वर्णन करो। चौधरी साहब तो पूरा नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट का एक मैप बना दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पता किए कि इस दाग नंबर क्या है, एसीपी नंबर क्या है, सब नंबर उन्होंने बताया। फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर का मन में शंका आ रहा है। एक दिन रात को उन्होंने आए, कृष्णनगर से सीधा पहुंच गए थे इसी स्वरूपगंज में, यहां पे सानंदा सुखदा कुंज जो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन कुटी, जहां पे बैठकर भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे, विशेष रूप से शरणागति का अधिक से अधिक भजन उन्होंने इसी जगह पर बैठकर लिखे। आमार जीवन सदा पापे रत नाहीक पुण्य रलेश, पड़े रे उद्वेग दिया जे कत जीवे रे दिए चिक्लेश। इस भजन का ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे कि रात को गभीर रात को 2 बजे मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मेरा मन में सिर्फ चिंतन है कि महाप्रभु का जो असली जन्म स्थान कहां पे है। तब मैंने अपने जीवन में मेरे धिक्कार आ गए, मैं इतना दिन चर्चा करने के बाद भी मैं पता नहीं कर पाता कि महाप्रभु का जन्म स्थान कहां पे है। अपना जीवन में धिक्कार का कारण उन्होंने लिखा, हमारो जीवन सदा पापे रत नाहीं को पुण्य रो लेश, पड़े रे उद्वेग दिया जे कत जीवे रे दिए क्लेश। तो जब गोभी रात हो गई, एक दिन उन्होंने पूछ गए थे कलकत्ते से भाया कृष्णनगर होकर इसी जगह पे, रात भर उनको नींद नहीं हुआ, तो उन्हें लिखा हमारे जीवन सदा पापे रत। उसके बाद और एक भजन लिखा, তুমি তো মারিবে যারে কে তারে রাখিতে পারে, তব ইচ্ছা বসতি ভুবন। স্বর্ণগতিকা কীর্তন হয়, স্বর্ণগতিকা অধিক সে অধিক কীর্তন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সানন্দ নিখোদা কুঞ্জে মঠকে উনি লিখেছেন। তুমি তো মারিবে যারে কেতারে রাখিতে পারে, তব ইচ্ছা বসতি ভুবন। এসব গভীর রাত মে উনি আত্মা চরিত মে লিখে কি কোন সা ভজন কোন সা সময় মে লিখে। প্রভুপাদ জী নে টোটাল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কে জিতনে সারে ভজন হ্যায় উসমে সে প্রভুপাদ জী কা মাই ফেভারিট ভজন বল কে 20 ভজন কো উনি চুনা। প্রভুপাদ জী টোটাল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কে জিতনে সারে ভজন হ্যায় উসমে সে 20 ভজন কো চুন লিয়ে থে। উসমে সে এক ভজন হ্যায় আমার জীবন সদা পাপের অত নাহি কো পুণ্যের লেশ, পরে রে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত জীবেরে দিয়েছি ক্লেশ। যখন গভীর রাত হো গয়ে থে তব ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দেখা কি বহুত হি দূর সে এক নিশানা দেখাই পড় রহা হ্যায় উনকে সাথ দো ব্যক্তি থে সাথ মে, এক উনকে অ্যাসিস্ট্যান্ট जो कि लिखने का काम वगैरह करते थे और एक था उनका पियन जो कि भक्तिवन ठाकुर का सेवा करने वाले थे। तो दोनों को बुला लिए साथ में। जो पियन है देखिए दोनों का दृष्टिभंगी कैसे होता है, जो उनका असिस्टेंट है ज्यादा संग करने का कारण भक्ति मार्ग में रहे, और जो उनका पियन है ज्यादा संग नहीं करते थे, सिर्फ ऑफिस टाइम में आकर ड्यूटी करके भाग जाते थे। तो दोनों को बुला लिए भक्तिवन ठाकुर ने, कि देखो तो उसी पूर्व कोण में ऐसा कुछ निशानी आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। जो असिस्टेंट है कहने लगे कि हां हां वो तो दिखाई पड़ रहा है, कुछ एक आलोक का निशाना दिखाई दे रहा है मेरे को। और पियन को भी पूछा साथ में, पियन बोलते मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं कि पूरा अंधा है कुछ नहीं है इसमें। तो भक्तिवन ठाकुर ऐसे वर्णन किए कि दोनों का मेंटेलिटी का ऊपर সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। তো সাধু কা সং করনে মে আসলি সং প্রাপ্ত হতা হ্যায় জীবন মে। ভালে ভি জো পিয়ন উনহোনে ভি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কে সাথ কাম কিয়ে থে, লেকিন জ্যাদা সং প্রাপ্ত নাই কিয়ে। লেকিন জো অ্যাসিস্ট্যান্ট রূপ সে কাম কিয়ে উনহোনে অধিক সে অধিক সময় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কা মাফিক এক মহান আচার্য কে সাথ উনহোনে সঙ্গ কিয়ে থে, জিসকে লিয়ে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কা জো দৃষ্টি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কা মন মে জো ভাবনা সেম ভাবনা উনকা ভি মন মে প্রকট হো গয়ে থে। তুমনে বতা কি হ্যাঁ মেরে কো ভি কুছ দিখাই পড় রহা হ্যায় কুছ নিশান কুছ ইন্ডিকেট। দুসরা দিন সবেরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরূপগঞ্জ সে পৌঁছ গে থে উসি জগা পর। তো জানে কে বাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সবকো পুছনে লগে এক জগা কি জো ম্যাপ ভি লেকর গায়ে থে সাথ মে, উনকে চরিত বিশ্লেষণ মে উনি বিশ্লেষণ কিয়ে কি জব লেকর গায়ে সাথ মে वो मैप भी साथ में लेकर गए थे, एकदम मैप से पाई टू पाई एज इट इज उन्हें फॉलो अप कर रहे कि कौन सा जगह ये हो सकता है। तो बताया चौधरी साहब कि दिस इज द राइट पॉइंट, ये असली जगह है। तब भक्तिविनोद ठाकुर ने एकदम डिटरमाइंड हो गए, एकदम एडमेंट हो गए दिस इज द राइट प्लेस एवर द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। আজ ভি বহু সারে যো শক্তবাদী যো অপর সম্প্রদায় হ্যায় যো তেরো প্রকার কা অপর সম্প্রদায় হ্যায় ও আজ ভি স্বীকার নেই করনা চাহতে হ্যায় কি মায়াপুর কো দোনো জগা বনা দিয়ে, ইয়ে কহতে কি মায়াপুর আর দুসরা হ্যায় প্রাচীন মায়াপুর। যো অপর সম্প্রদায় গোষ্ঠী হ্যায় জিস অপর সম্প্রদায় কো উপর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নে ভজন লিখতে কি তিলক নাকে গলায় মালায় এ তো একে কলির চেলা। মহাপ্রভু আর মহাপ্রভু কা পার্শ্বদ বিন্দু কো অপ্রকট হোনে কে বাদ इस अपर संप्रदाय इतने शक्तिशाली हो गए थे कि महाप्रभु का भी निंदा करना चालू कर दिए थे। इसके ऊपर एक महान योगी व्यक्ति थे जिसका नाम है बृषकिसेन। बृषकिसेन जिन्होंने ये अभय चलन सीरियल देखे उनको जरूर पता होगा, उसमें कैरेक्टर महाराज ने बनाए जिसका नाम है फुलगु बाबा। तो बृषकिसेन इक्विवेलेंट टू फुलगु बाबा, मतलब बृषकिसेन का चरित्र को महाराज ने फुलगु बाबा रूप से प्रकटित किए थे। किस फुलगु बाबा इतने शक्ति योगी पुरुष होने का कारण कुछ योग बल के द्वारा कुछ चमत्कारिता उन्होंने दिखाया। रेहेंडा साहब उसी समय एक बहुत बड़ा ऑफिसर थे, इंग्लिश ऑफिसर है, तो देखा कि ये जो व्यक्ति चल रहा है इसका काम बृषकिसेन, इसको अगर कोई व्यक्ति इसके साथ लड़ सकता है वो है भक्तिविनोद ठाकुर। ही इज द राइट पर्सन टू फाइट विथ हिम। भक्तिविनोद ठाकुर एक व्यक्ति है जो कि इस बृषकिसेन के साथ लड़ सकता है। तो बाद में भक्तिविनोद ठाकुर को भेजा, भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको अरेस्ट करके लेकर आया, बाद में उसको जेल हो गई, जेल में भी मर गए थे उन्होंने। तो भक्तिविनोद ठाकुर जब अपना दो व्यक्ति को लेकर गए थे उसी जगह में मायापुर में जाकर, जो एकदम अकॉर्डिंग टू मैप डायरेक्शन, मैप में जिस तरीके से ड्राइंग किए उसी तरीका से उन्होंने पता कर ली कि यही असली जगह है जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे, जिस जगह का नाम है मायापुर। नवोद्वीप मध्य होइल एक स्थान तथा तो जन्मिलेन गौरचंद्र भगवान। भक्तिविनोद ठाकुर सोच लिए थे कि आफ्टर माई रिटायरमेंट, मैं नौकरी से जब मेरा अवसर प्राप्त हो जाएंगे मैं वृंदावन में जाके मैं रहूंगा। देखिए किस तरीके से उन्हें मायापुर में रुक गए थे। उनका मन में विचार था कि आफ्टर माई रिटायरमेंट, चाकरी से अवसर लेने के बाद नौकरी से जब मैंने रिटायर हो जाऊंगा, अवसर प्राप्त हो जाऊंगा, तब मैंने वृंदावन में जाकर मैं भजन करूंगा अच्छे से। तो ये सोचकर उन्होंने एक दिन पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है तारकेश्वर। जैसा कि शिव जी का लिंगो अलग अलग जगह में रहते हैं, बारह द्वादश लिंगो, उसमें से एक जगह है तारकेश्वर बोलते हैं, जहां पे भगवान शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है जहां पे हर व्यक्ति जाते थे। तब भक्तिविनोद ठाकुर का मन में आए कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने वृंदावन चल जाऊंगा, वृंदावन में जाके मैं अच्छे तरीके से उधर भजन वगैरह करूंगा, तो उधर जाके मेरे को भजन वगैरह करना है। तो उनके मन में भावना हो गए और ये सोचकर उन्होंने पहुंच गए थे तारकेश्वर, जहां पे शिव जी का मंदिर है। ये तारकेश्वर एक इतना फेमस जगह है कि कहते कि साल में दो बार बहुत सारे जनता कांध में पानी लेकर जाते हैं, चल के जाते हैं, बहुत कुछ मिलते रहता है, ऐसा कुछ सुनाई पड़ते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर सिर्फ अपना कौतूहल का कारण, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, क्योंकि बचपन में उन्होंने शिव जी का हाथ में, शिव जी का लिंगों के ऊपर हाथ रखकर कहने लगे कि राम 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 राम, तो राम का शब्दों को इको आए, प्रतिध्वनित तो होकर उनका मन में भगवान का भक्ति का वारे श्रद्धा। तब उन्होंने ये तारकेश्वर पूछ गए थे, बोलते मैंने तो बचपन में मैंने शिव जी का मस्तक में हाथ रखा था, लिंगों के ऊपर मैंने हाथ रखकर राम 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 ध्वनि की। तब उन्होंने पूछ गए थे तारकेश्वर में, ये बहुत फेमस जगह है बंगाल में, बहुत सारे भक्त हो अभक्त हो कोई भी ये शिव जी का उधर जाते हैं, मतलब पानी वानी लेकर जाना पड़ता है उसमें, तो जाते हैं बहुत बहुत बड़ा बड़ा लंबा लाइन होते हैं दर्शन करने के लिए शिव जी को। तो भक्तिविनोद ठाकुर तो तारकेश्वर पहुंच गए थे, ऐसे ही सोच, मतलब बिना सोचकर पहुंच गए उन्होंने कि चलो मेरे को तो अभी थोड़ा दिन और है मैं नौकरी, ये नौकरी खत्म हो जाने के बाद मैं तो वृंदावन चले जाऊंगा, तो चलो मैं तारकेश्वर पहुंच जाता हूं। तब उन्होंने जिस दिन तारकेश्वर में गए, तारकेश्वर में जाकर उन्होंने एक छोटा एक रूम ले लिए थे मंदिर का एकदम आजू बाजू में। तब तो तारकेश्वर इतना फेमस नहीं था, फिर भी फेमस है लेकिन इतने नहीं थे जो आज का दिन में फेमस है। प्रभुपाद जी भी इस तारकेश्वर में गए थे, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जब गए तब प्रभुपाद जी का भी मन में क्यूरियोसिटी था कि इतने सारे भक्त लोग अभक्त लोग क्यों जाते हैं तारकेश्वर में। प्रभुपाद जी एक पत्र में बताया, मैंने जिंदगी में पहली बार एक ही बार मैंने तारकेश्वर गया था। तारकेश्वर जाने का पहले एक जगह है जिस जगह का नाम है मानकुंड। मानकुंड में एक तालाब है जिसका नाम है मानव पुष्करिणी। कहते हैं कि इस मानव पुष्करिणी में जाकर अगर कोई डुबकी मरते हैं मन में जो भी कुछ भावना है वो अपना से आप प्रकटित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बताए कि मैंने जिंदगी में पहली बार तारकेश्वर जब गए, तारकेश्वर जाने का पहले एक जगह है जिसका नाम है मानकुंड। मानकुंड में एक तालाब है जिसका नाम है मानव पुष्कर। इस मानव पुष्कर में जाकर मैंने 3 डुबकी मारा था और डुबकी मारने का समय कुछ कहना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैंने ये डुबकी मारने का समय मेरा मन में विचार आए कि मैंने अपना गुरु का मुखारविंद से मैंने जो निर्देश सुना हूं वो निर्देश को अच्छे तरीके से फॉलो करने का। गुरु जी ने क्या निर्देश दिए थे कि आपने इतना विद्वान हो, इतना पढ़ाई लिखा है, क्यों इतना इंग्लिश आपको आता है, आपने विदेश में जाकर अब हरि भक्ति का प्रचार करो। वही मैंने जब इस मानसी मानवी कुंड में जाकर मैंने 3 डुबकी मारा, वही मेरे को याद आए थे। तो 3 डुबकी मारने का समय मैंने वही याद किया था। पता नहीं मेरे को शिव जी का कृपा कि साधु गुरु वैष्णव की कृपा से धरा, मैंने वो सफल हो गए थे मेरा। तो आज भी वो तालाब है, व्यक्ति हर व्यक्ति जब तारकेश्वर जाते हैं उसके बीच में एक जगह है मानकुंड, उसमें जाकर नहाना पड़ता है, जाकर वो तारकेश्वर जाना पड़ता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये तारकेश्वर में जाकर, उन्होंने भी पहली बार गए मानकुंड में जाकर डुबकी मारकर तारकेश्वर पहुंच गए। ये तारकेश्वर पहुंचने के बाद एक छोटा कुटिया लिए उन्होंने, क्योंकि सारेना में मेरे को इसको विराम देना है, उसके बाद भजन। तो पहुंचने के बाद उन्होंने इस तारकेश्वर में जाने के बाद एक छोटा कुटिया ले लिए, एक दो दिन के रुकना है मेरे को इसी जगह। कि शिव जी का पूजा वगैरह कैसे होता है मेरे को देखना है, इसके लिए मैंने गया हूं। एक पुष्प होता है जिसका नाम है आकंद पुष्प बोलते हैं, एक सफेद कलर का होता है, सफेद और ब्लू कलर का, जो कि कहते हैं कि शिव जी का सबसे ज्यादा पसंद होता है ये। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये साथ में शिव जी का चढ़ाने के लिए ये आकंद पुष्प लेकर गए हाथ में। और जब ये आकंद पुष्प शिव जी का मस्तक में देकर अपना घर पे आए, क्योंकि उनका मन में पहले से विचार था मेरे को अभी जाना है वृंदावन, आफ्टर माय रिटायरमेंट चाकरी से छुट्टी मिलने के बाद मैं वृंदावन में जाके रहूंगा, तो ये भावना से उन्होंने पहुंच गए थे तारकेश्वर। तारकेश्वर शिव जी का पूजा करने के बाद अपना कुटिया में आए। कुटिया में आकर जब रात को उन्होंने देखने लगे कि शिव जी स्वयं बोल रहे आप कहां जा रहे हो, आपको वृंदावन जाने की कोई जरूरत नहीं, आपका घर का नजदीक में नवद्वीप धाम जिसको उद्धार करने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आपको भेज दिए इसी जगह में, महाप्रभु का नित्य सिद्ध पार्षद लीला स्थली श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम नवद्वीप धाम को आपको उद्धार करना है। जब उन्होंने ये वाक्य को शोभन कर ली रात को, तब उन्हें तुरंत डिसीजन चेंज कर लिया, नहीं मेरे को वृंदावन नहीं जाना है, मेरे को मायापुर धाम में रहकर महाप्रभु को जो गुप्त लीला स्थली उसी लीला स्थली को मेरे को उद्धार करना है। दूसरा दिन उन्होंने तारकेश्वर छोड़कर आ गए थे फिर नवद्वीप धाम में। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत दिन तक सोच रहे थे कि मेरे को गुरु ग्रहण करना चाहिए, गुरु बिना मैं भक्ति मार्ग में अपने को प्रगति नहीं कर सकता हूं। लेकिन गुरु ग्रहण करना ऐसा मामूली नहीं है। इसके पहले का भी एक लीला है जहां पे भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि एक बाबा जी आए थे उनके सामने जो कि भक्तिविनोद ठाकुर को कभी श्रद्धा नहीं की। क्यों श्रद्धा नहीं की? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर शुरुआत में कभी कंठीमाला कभी तिलक ये सब धारण नहीं करते थे। तो ये देखकर उनका मन में भावना है कि अरे ये कैसे एक वैष्णव है जिनका गला में कोई कुंठी माला नहीं है, तिलक नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का मधुर वचन के द्वारा प्रभावित होकर एक दिन वही बाबा जी आकर उनको पास क्षमा मांग लिए कि मैंने आपका चरण में मैंने बहुत अपराध किया हूं। बोलते क्या अपराध की हो आपने? बोलते मैंने आपको अवज्ञा की बहुत। क्यों मैंने अवज्ञा की? नहीं, इसके लिए किया कि आपका कोई तिलक नहीं है, कुछ कंठी माला नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहने लगे कि मेरा जीवन में आज तक गुरु नहीं आए, गुरु का आदेश बिना मैं कैसी ये तिलक, कैसी ये कंठी माला को मैं धारण कर सकता हूं। तो महापौर एक दिन रात को सपने में आए, कहने लगे कि आपका गुरु विपिन बिहारी शीघ्र अति शीघ्र आपका पास आ जाएंगे। थोड़ा समय के बाद, थोड़ा दिन के बाद विपिन बिहारी गोस्वामी का एक पत्र आए जे मैंने आपको जरूर आ रहा हूं, जरूर आके मैं आपको मिल रहा हूं। चेते चेते मेरे ग्रंथ में भक्त विनोद ठाकुर एक जगह में अमृत प्रभाव भाष्य में उन्होंने इसका वर्णन किया है, विपिन बिहारी तार शक्ति अवतरी विपिन बिहारी प्रभु वर। ए विपिन बिहारी कहां पे रहते थे? कालना बोल के एक जगह है, जिन्होंने इसमें से बहुत सारे भक्तों ने दर्शन किए कि गौड़ गदाधर मंदिर, उसका नजदीक में एक जगह है जिसका नाम है बाघनापाड़ा, और बाघनापाड़ा और कुंती घाट, बांसबेड़िया कुंती घाट बाघनापाड़ा तीनों आजू बाजू का जगह है। इसी बाघनापाड़ा में विपिन बिहारी रहते थे। और भक्त विनोद ठाकुर हर शनिवार को ये विपिन बिहारी को मिलने के बाद इसी स्वरूपगंज में आकर रहते थे। तो भक्त विनोद ठाकुर ने इस नवद्वीप धाम महात्म ग्रंथ को रचना की थी, क्योंकि महाप्रभु का गुप्त लीला स्थली जो है वह नवद्वीप धाम। तो जाकर उन्होंने और ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब 1893 में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मायापुर दर्शन करने के लिए आए, आज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्त विनोद ठाकुर को अपना गिरधारी सेवा में नियुक्त किए थे। किस तरीका से? ना जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इस गिरिधारी को प्राप्त किए थे जब उनका बहुत उम्र हो गए, जब वो सेवा वगैरह नहीं कर पाते थे, तब एक दिन उसी गिरिधारी को एक कोठरी में लेकर उन्होंने इस मायापुर धाम में आए। और जब मायापुर धाम में आए तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पहले मिला इस भक्त विनोद ठाकुर को, और इस भक्त विनोद ठाकुर का हाथ में इस गिरिधारी को उन्होंने समर्पित कर दिए थे। भक्त विनोद ठाकुर जीवन का अंतिम दिन तक इस गिरिधारी को सेवा वगैरह की, और कैसे उनका तिरुभाव लीला का प्रकट किए थे। आज है गदाधर पंडित का तिरुभाव तिथि। इस गदाधर पंडित का तिरुभाव तिथि में गदाधर पंडित का ऊपर चर्चा करने से करते करते भक्त विनोद ठाकुर का तिरुभाव उज्जापित हो गए। तो आज एक महान दिवस है जिसमें दो महान आचार्य श्री भक्त विनोद ठाकुर, श्री गदाधर पंडित, दोनों का तिरुभाव तिथि। ये दोनों को हम लोग उनका भजन का माध्यम से हम लोग स्मरण कर सकते हैं। भक्त विनोद ठाकुर ने ऐसे तो बहुत सारे भजन का वर्णन किया है शास्त्र में। श्री प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जिसको अगर भागवतम का वाणी पढ़ने में बहुत कठिन लगता है, श्री प्रभुपाद जीवन का जब अंतिम मुहूर्त आ गए थे, आपने बहुत सारे प्रिय शिष्य को बुलाया है। ये दमल कृष्ण महाराज का मुखारविंद से मैंने श्रवण की थी एक बार, उन्होंने बताया कि श्री प्रभुपाद का जब जीवन का एकदम अंतिम मुहूर्त में आ गए, तो श्री प्रभुपाद अपना जब प्रिय शिष्य सबको बुलाकर उन्हें कहने लगे कि मैं आपके पास कुछ भी नहीं मांगता हूं। तमाल कृष्ण महाराज ने पूछने लगे कि क्या चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम अस, आपको क्या चाहिए आप बताइए। मतलब मैं यही चाहता हूं कि आप सब इकट्ठा होकर भक्तिविनोद ठाकुर के साथ भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन का अंतिम दिन तक स्मरण करते रहो। अगर भक्तिविनोद ठाकुर का अगर अच्छे तरीके से स्मरण करोगे तो इसी जीवन में आप गोलोक वृंदावन तक आप पहुंच सकते हो। तो मेरा जीवन में एक ही इच्छा है कि आप सब एक साथ रहकर भक्तिविनोद ठाकुर का स्मरण करते रहो। तो भक्तिविनोद ठाकुर श्रीमद् भागवत का ऊपर जो 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत है उसमें से 800 भजन उन्होंने लिख दिए थे। शरणागति का ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने लगभग 70 का ऊपर भजन है, ही रोट मोर देन 70 भजन अबाउट द शरणागति। शरणागति का ऊपर उन्होंने 70 भजन लिखे हैं। तो आज एक परम पवित्र तिथि है जिस तिथि में हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर को उनका भजन के द्वारा ही हम लोग स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्रील गदाधर पंडित प्रभु की जय। शाम को मैंने भक्तिविनोद ठाकुर और गदाधर पंडित का ऊपर और विस्तृत रूप से और बताऊंगा। हरे कृष्ण की अभी भजन का कार्यक्रम है, उसमें लिखा है 9 से 12 बजे तक भजन। बहुत सारे भक्त है जिसका मन में इच्छा है आज भक्तिविनोद ठाकुर का भजन गाने का, तो सबको इस मौका मिलना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर के स्मरण का माध्यम से, भक्तिविनोद ठाकुर के भजन का माध्यम से हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी भजन कार्यक्रम।